اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایک ایک لفظ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کی, اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آیات ہمارے عمل کا حصہ بن جائیں, کہ ہم اس کو پڑھیں جب تو ہمیں اس میں سے ایک ایک چیز ایسے لگے کہ جیسے ہمارے دل پہ نقش ہو رہی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ توبہ آیت نمبر 75 سے ہم دیکھیں گے اب کچھ آیات. تھوڑا سا پیچھے سے ربط جوڑیں گے, اور ربط یہ ہے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ منافقین کے مختلف عذر اور بہانوں کا تذکرہ تھا, کس طریقے سے وہ نیکی کے کام سے پیچھے رہنے پہ خوشیاں منا رہے تھے, اور خاص طور پہ جو ہمارا اس سے بالکل پیچھے کا لیسن تھا وہ سارے کا سارا ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ضرورت پڑتی ہے, اس وقت اگر ایک انسان موجود نہیں, اس کا جب دل چاہے یا اس کی خواہش ہو کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ کروں, تو پھر موقع نہیں ملتا. آج جو حصہ ہے اس کا سب سے بڑا تھیم یہی ہے کہ ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم اس وقت نہیں تھے جب تمہاری ضرورت تھی. تھوڑی سی بات کر کے بات شروع کروں گی کہ نیکی کے کام ہمیشہ ہی انسان کرنا چاہتا ہے. ہم سورۃ بقرہ سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی کی اصل روح یہ نہیں ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے, بلکہ نیکیاں تو اندر سے پھوٹتی ہیں, اور نیکی کرنا انسان کی روح کا تقاضا ہے. آج نہ جانے کس نے موسیقی کو روح کا تقاضا کہا, اگر اسی کے برابر ایک وزن کا جملہ بول دیں کہ نیکی روح کا تقاضا ہے, اللہ کے راستے کی جد و جہد روح کا تقاضا ہے. انسان کی خوشی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پہلے خود کو اللہ کا بندہ بنانا, پھر اس کے اس پیغام کو لے کر دوسروں کو اللہ سے جوڑنا, اور پھر اللہ کے نظام کو زندگی اور پوری دنیا پہ نافذ کرنا. یہ تین تقاضے ہیں اللہ اور قرآن کے. ہم سے کئی دفعہ درسوں میں اس پہ بات ہوئی ہے الحمدللہ. تو جو انسان ان تقاضوں کے حصول میں کوشش میں زندگی گزارتا ہے نا, وہ مطمئن ہے. آپ ہوں یا میں ہوں, ہر انسان اگر یہ تین کام کر رہا ہے, نمبر ایک خود اللہ کا بندہ بن رہا ہے, دوسرے درجے پہ یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کا بندہ بنانے یا اللہ سے جوڑنے کی کوششیں کر رہا ہے, اور تیسری بات ہے کہ اپنی پوری کوشش سے اللہ کے دین کا دفاع کر رہا ہے, نافذ کرنا اللہ کیا چاہتا ہے. وہ گھر کی شادی سے بھی شروع ہوتا ہے اور عدالتوں تک بھی چلتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ایسا بندہ مطمئن ہوتا ہے. جو بندہ یہ کام پورے شرح صدر سے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن. جو یہ کام ظاہر داری کے ساتھ کرتا ہے لیکن اندر ابھی روح نہیں اتری, اس کو کہتے ہیں منافق. اور جو ان سارے کاموں سے برملا اپنے آپ کو آزاد سمجھتے, اس کو کہتے ہیں کافر. یہ ہے سیدھی سی کہانی, جس کو جتنا مرضی لمبا لے کر چلے جائیں کرتے جائیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی وقت ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ضرورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انسان کی جان کی, وقت کی, خون کی, پسینے کی, سکلز کی, یعنی جس میں ایک انسان خود چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے رستوں میں کھپے. دوسری ضرورت ہوتی ہے مال کی. آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا مال کا تذکرہ, اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تھوڑا سا جان کے تقاضوں کو. تھوڑی سی مال کی بات کر لیتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے سے روکنے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ مال ہے. اگلی آیات جو ہم پڑھنے لگے ہیں 75, تین آیات میں ایک کردار ہے. میں آپ کو سختی سے کہوں گی کہ اس کردار کے ساتھ ایک نام آتا ہے سالبہ کا, اس کو نہیں کوٹ کیجیے گا کبھی بھی, کیونکہ یہ بڑے مخلص صحابی تھے. لیکن بعض تفاسیر کے آلموسٹ ہر تفسیر میں یہ تین آیات جب ہم پڑھنے لگے ہیں, اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے سالبہ کے نام پہ. لیکن یاد رکھیے کہ یہاں ان کا جو نام اور جس سے واقعات ہیں اس کی سند درست نہیں ہے. اصل میں ایک مخلص صحابی کے بارے میں یہ تان ہے جو کسی بات میں بغض رکھنے والے نے کیا. پھر یہ کیا ہیں آیات؟ ایک کردار ہے. کہہ لیجئے کہ مدینہ کے وہ منافقین جو آج ہم مسلمان اور خاص طور میں پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی بطور خاص مقام عبرت ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. کیوں, کیا ٹاپک ہوگا اس کا؟ لکھیے کہ اس کا بڑا سا کر کے ٹاپک باندھیے, دنیا کا مال کماتے کماتے ایمان نہ چلا جائے. وہ دولت یعنی دنیا کی دولت کو بڑھاتے بڑھاتے جب ایمان کی دولت ہاتھ سے جانے لگے, تو ایسی دولت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. इसी बात को लामा इकबाल ने एक बड़े खूबसूरत शेर में भी कहा था कि आती हो जिस रिस्क से परवाज में कोताही, इस रिस्क से मौत अच्छी। और उसमें उन्होंने तायरे लाहूती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हकीकत यह है कि इस वक्त आज हमारे इर्द गिर्द हमारे भाइयों, बेटों, मर्दों और अब तो काफ़ी हद तक बेटियों और औरतों का भी मसला माल कमाना हो गया। इन आयत में हम देखेंगे एक किरदार है, अल्लाह ने उसको दिया हुआ था, भूखा तो कोई नहीं मरता, अल्लाह ने बिस्तर भी दिया और खाना भी दिया है, और अल्लाह रज़ाक है। पिछले सबक में आपको ज़कात की बाँट में ये जुमले बताए थे कि अल्लाह चूँकि रज़ाक है तो उसने सबको देना है, बस कुछ को ज़्यादा देकर कुछ को कम देता है, कहता है तुम कम वालों को दे दो ताकि तुम्हें अजर मिल जाए, मैंने तो दे ही देना है। लेकिन जब लोग इस बाँट को बदल देते हैं तो फिर गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक शख्स था मदीना में, उसकी पूरी पड़ती थी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी दुआ करें कि मेरी बकरियों में इजाफ़ा हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने उसे कहा कि क्या तुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तू मेरी तरह रहे, यानी मेरा लाइफस्टाइल तुझे पसंद नहीं है कि ठीक है गुजारे का। कहा नहीं अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि बहुत माल हो और मैं उस माल को फिर अल्लाह के रस्तों में खूब बांटूँ, ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा बांटूँगा। इसरार किया उसने, अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। जो ही दुआ की उसकी बकरियों में इजाफ़ा शुरू हो गया। इतना इजाफ़ा शुरू हुआ कि पहले मस्जिद नबी से करीब था, अब उसको थोड़ा दूर जा के रहना पड़ा, बड़ी जगह चाहिए थी, बड़ा चाहिए था। अब ज़रा सा दूर हुआ तो 5 की जगह सिर्फ फिर 3 नमाज़ों में आने लगा। थोड़ी और बरकत हुई, बढ़ते बढ़ते वो नमाज़ें 2 और 1 पर रह गईं, और एक वक्त ऐसा हुआ कि वो मदीना से बाहर जाकर खुली जगह पर रहने लगा, मस्जिदों से गायब। इतने में कहते हैं कि ज़कात का मौसम आ गया, जैसे नबी सल्लम उसी तरतीब के मुताबिक जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि हर साल उमाल को भेजते तो लोगों से ज़कात वसूल होती थी। तो जब किसी ने जाकर इससे ज़कात का सवाल किया तो कहने का ये क्या होता है, ये तो मुझे जिज़िए की बहन लगती है, यानी गैर मुस्लिमों से हम जिज़िए लेते हैं, सोचूंगा फिर आना। अल्लाह के नबी तक बात आई, आपके मुँह से कुछ अल्फाज भी निकले वईल के कि अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि इस तरह के हालात अगर बने किसी भी के साथ बने, या वो ये एक फ़र्ज़ी किरदार है, लेकिन मेरे आपके लिए कायना है, और ये हर उस बंदे का मामला है कि जो रिस्क को कमाने या बढ़ाने किसी भी नाम पर, जॉब, कारोबार, किसी और नाम से कोई और दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए दीन का तकाजा पीछे, और मैं तो कहती हूँ अपने ना हो तो अपने बच्चों और अपने घर वालों के ये तकाजे हमें दीन से दूर करते हैं। एक एक लफ्ज़ को देखिएगा, आपको मेरे कुछ कहे बग़ैर समझ आएगी। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वह मिन हुम, और इन्हीं में से, नोट करे हुम कौन, ये मदीना में रहने वाले नबी के करीब के लोग। याद रखिए बाज़ दफ़ा इंसान कहता है कि मैं नबी के दौर में होता, अक्सर हम में से लोग कहते हैं, और अशार में तो बहुत ही है, होता मैं सग मदीना का रहता गलियों में, यानी मैं मदीना का कुत्ता होता तो बेहतर था उस दौर में, ये शायर हैं पूरी एक नज़म के। तो हम आप ये जो सोच लेते हैं ना कि हम नबी के दौर में होते, तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि हम उस दौर में नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद होना अगर ये बख्शिश की अलामत बन जाती तो फिर इन बेचारे 70-80 और 200-300 मुनाफिकों और अब्दुल्ला बिन उबई का क्या कसूर था। मान लेते हैं अबू जाल तो काफिर था, वो तो कलमा ही नहीं पढ़ता, और ये तो हम भी बड़े खुशी से कहते हैं काफिरों ने नहीं जाना जन्नत में, हम मुसलमानों ने जाना है, तो फिर ये सूरत तौबा क्या बताती है। अगर दीन के अमली तकाजे नहीं पूरे करने तो फिर नमाज रोज़ा तो फिर सिर्फ याद रखिए कि अब्दुल्ला बिन उबई को नहीं बचा सका, वो तो मस्जिद का नमाजी था। तो इसलिए ये सोचना कि मैं उस दौर में होता, ये अपने लिए रिस्क है। वल्ला ही अगर उस दौर में होते तो पता नहीं आज कहाँ मुँह छुपाते फिरते। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नाबीना हो गए थे, अपने उम्र के आखिरी हिस्से में किसी को मिले, बूढ़े थे, अल्लाह के नबी जा चुके थे, तो जिसको मिले तो उसने उनसे कहा कि आप की आंखें पहले थीं, कहा थीं, कहा अच्छा आपकी आंखों ने नबी सल्लम को देखा था, तो उन्होंने कहा मेरी आंखों ने नबी सल्लम को देखा था। तो जो पूछने वाला था उसने कहा हाय आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपकी आंखों ने अल्लाह के नबी को देखा, आपने उनका दौर पाया। तो उस पर उस सहाबी ने कहा खुशकिस्मती की बात और है, लेकिन यह आसान नहीं था कि नबी के दौर में थे हम, ये बहुत बड़े तकाजे जाता था। तो याद रखिए कि आज भी जितनी बड़ी नेमत उतना बड़ा तकाजा है। अगर आप घर से बैठ के सुनते हैं आपके लिए के निकल के आने का रास्ता बन गया, ये आपकी आजमाइश है। कहीं आने का रास्ता था, अब कहीं उससे भी करीब आ गए और आजमाइश है। कहीं आप रिकॉर्डिंग से सुनते थे, अब आपके पास उस्ताद मौजूद है, ये उससे भी बड़े तकाजे हैं। ये परचोल तो क़यामत के दिन होने हैं कि हम अपनी सुस्तियाँ देखते हैं, अपने आराम देखते हैं, और हमारे वो मजबूरियों के आईने जिनमें हम खुद को भी देख के आंखें झुका लें कभी, क्या ये हमें निफाक में तो नहीं ले जाते। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं, वह मिनहुम मन आहद अल्लाह, इनमें से कोई ऐसा भी था जिसने अहद किया अल्लाह से। क्या किया? लाइन आताना, अगर उसने दिया हमको, मिन फजली ही अपने फजल से, लनसद्दकन्ना, अलबत्ता हम ज़रूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना, और अलबत्ता हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनस्सालेहीन, सालेहीन में से। अगर आप इस आयत के थोड़े से लफ्ज़ी हुसन को देखें ना, पहले है मिनहुम मन, मन क्या है? वाहिद, एक के लिए आता है ना, वाहिद, मैं एक, ठीक है। फिर आप देखिए लाइन आता ना, नालिफ क्या है? जमा। फिर आप देखिए ला न सद्दकन्ना, ला में नून क्या है? जमा की। ला न कूनन्ना में नून क्या है? आप देखिए कि शुरू में बात वाहिद की थी, लेकिन अगले सारे सीगे। तो ये समझ आता है कुरान का अंदाज के एक किरदार को पेश करके एक रवैया पेश किया जा रहा है। अगर मैं इसका बिल्कुल लिटरल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँ ना, जो पढ़ने में सुनने में मज़े का नहीं लगेगा, तो वो क्या है? और इनमें से कोई एक ऐसा है जो कहता है, अगर हमें उसने दिया अपने फजल से, तो हम ज़रूर सदका करेंगे और हम ज़रूर नेकोकार बन जाएंगे। हालांकि होना क्या चाहिए था? और इनमें से कोई एक ऐसा है जो अहद करता है अल्लाह से कि अगर दिया उसने मुझको, लाइन अतानी, अगर उसने दिया मुझको, मिन फदली ही अपने फजल से, तो ला सद्दकन्ना, मैं सदका करूँगा, नून नहीं होना चाहिए था, वला कूनन्ना मिनल सालेहीन, अलिफ होनी चाहिए थी। लेकिन फिर वो सिर्फ़ एक किरदार होता, फिर हम भी तारीख के सफ़े ढूंढते रहते कि वो एक किरदार कौन था, कभी उसका नाम मिल जाए ना, फिर हम स्टोरियाँ बना बना के लोगों को पढ़ के सुनाएं। नहीं, हर एक इस आईने में खुद को देखे, इन मिन हम में से मैं भी अपने आप को देखूं, और अगर ज़रूरत हो तो इस मन के आगे मैं अपना नाम लगा के पूछूं, मैंने अल्लाह से कितने वादे किए। ये जो आहद अल्लाह, ये क्या है? अहद किसको कहते हैं आप? पक्का वादा, एक होता वादा, वाद में होती है उम्मीद, वादा दिलाना, किसी को आपने होप दिला दी, आई विल डू इट, और अहद क्या है? कमिटमेंट, प्लेज ना भी कहे ना तो कमिटमेंट, मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं आपके ये काम करूंगी। 3 सेकंड तक मेरे समेत आप सब यहाँ बैठकर अपने अपने अल्लाह से किए हुए अहदों को याद करें। आज तक जिंदगी में कितनी बार अल्लाह के नाम पे कमिटमेंट की, कुछ भी करने की, हर रमज़ान में करते हैं, बस अब ठीक हो जाऊंगी, अब सीधी हो जाऊंगी, हर मौत पे करते हैं, क्या अब सीधी हो जाऊंगी, अब दुनिया में नहीं भागना, हर वो दिन जब बच्चा लेट आता है कहते हैं अल्लाह आज बच्चा खैर से आ जाए, बस अब मैं तेरे आगे आ जाऊंगी। हम तो दिन में 10 दफ़ा अल्लाह से अहद करते हैं छोटे छोटे, और कभी तो वह अहद जाकर हम दूसरों के सामने भर भी देते हैं, कागज़ों की सूरत में, फॉर्म्स की सूरत में। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप भी एक अहद के बंधे हुए हैं, अगर आपको स्कूल से कोई कॉल जाती है तो एक अहद का हिस्सा है कि आपको आपके भूले हुए वादे याद दिलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में एक खुशी की हवा चलते ही, गम नहीं, इन आयतों का एक टॉपिक और भी लिख लीजिए, खुशियों के अंदर अल्लाह के साथ किए हुए वादों को कायम रखना, यहाँ गमों की बात कोई नहीं, क्योंकि एक जुमला लिख लीजिए, इंसान खुशियों में ज़्यादा खुशी से अल्लाह के रस्तों में आता है, गम सदमे तकलीफ़ें तो डिप्रेशन में डाल देते हैं, दुखी कर देते हैं, है ही नहीं, उदास हूँ, दिल परेशान है, डिप्रेशन है, फलां है, ये है, लेकिन जब खुशी आती है ना, तो वो एक जज्बा आता है, एक एनर्जी आती है। और ये भी याद रखिए, आम तौर पे आपकी मेरी कैफियत नॉर्मल रहती है, रहनी चाहिए, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सट्रीमली रवैया आते हैं, जज्बातियत, इमोशनलिज्म, एकदम खुशी की खबर, एकदम एक्साइटमेंट की खबर, और इसी तरह दूसरा भी एंगल होता है, कोई गम की खबर, दुख में डालने वाली, ये जो एक्स्ट्रा जज्बे आए हैं ना, कह लीजिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आ गई, ये ऐसी है जैसे आपको 220 वोल्टेज काफ़ी था आपके लैपटॉप पे लिए, लेकिन आपने इसको 420 में लगाया, अब ये क्या हुआ, 220 इसके लिए ठीक था, ये जो ऊपर का 200 था ना, ये या तो इसको जला देगा आपके लैपटॉप को, या अगर आपकी बल्ब ट्यूब में आएगी ना, एकदम तेज़ लाइट जलेगी। पाकिस्तान में कभी ऐसी देखी होगी आपने फ्लक्चुएशन, लाइटें बहुत तेज़ होती हैं लेकिन अगले लम्हे जल जाती हैं। ये जो मेरी आपकी ज़िंदगी के एक्साइटिंग रवैये होते हैं ना, जज्बाती, एक किसी न किसी एंगल में बाहर ज़रूर निकलेंगे, वरना फट जाएंगे। और अक्सर लोगों की ये खुशियों वाली एक्साइटमेंट अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ने की सूरत में निकल जाती है, ये फ्लडिंग है, जैसे रश। मेरे जहन में इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पानी का पाइप फट गया। ये पिछले 2-3 महीने जब गर्मियों में थे फ्रांस में, तो वहाँ तो एक मैंने देखा ये रिवाज है या क्या बन गया, हर दूसरी गली में पाइप फटा हुआ। हम जिस रास्ते से जाते थे, मेन रोड थी, तो वहाँ जब देखना तो जी पाइप फटा हुआ। पाइप क्या फटा है, दूर से आपको दिख रहा है एक बड़ा सा फुवारा चला है और बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गाड़ियाँ नीचे घूम रही हैं, बड़े परेशान। हाय अल्लाह रहम करे क्या होगा। एक दिन देखा ऐसे ही है, लोग हंस गिर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पाइप फटा है। दूसरे दफ़ा फिर देखा, बाद में क्या पता चला कि ये वहाँ के लोग खुद ही खोल देते हैं। गर्मी शदीद थी तो लड़के शरारती जो होते हैं वो जाके पाइप खोलते हैं और फिर वो पानी खोल के उसमें नहाते धोते हैं। सारे शहर में उनका ये हाल है। तो वो जो कैफियत होती है ना, एकदम उछलते हुए पानी को निकलता देखकर, इसको महसूस कीजिए इस वक्त। जब मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की खुशी मिलती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ मिलेगा, वो भी मिल गया। अब तो अब क्या करूं। आप अपनी जिंदगी का कोई महरूम लम्हा याद करें, बिल्कुल होपलेस, डिप्रेस्ड, मेरी जिंदगी बंद बंद गली में हूं, मुझे औलाद नहीं मिलनी, मैं ऐसे ही रहूंगी, फिर मेरा बुढ़ापा कैसे होगा। और एकदम अल्लाह ने उम्मीद दिला दी, शायद किसी के साथ ऐसा हुआ, बस वो एक बच्चा ही काफ़ी है आपके मेरे रास्ते में, अल्लाह के मुकाबले में एक बहुत बड़ा बुत बनने के लिए। इसी तरह शादी, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 हो गया है, अब कहाँ होनी है जी, कोई उम्र में शादी होती, 35 हो गए, अल्लाह ने रिश्ता भेज दिया। हम कहते मेरी शादी होने गई, अच्छा बस अब अल्लाह थैंक यू सो मच, अब बनूंगी तेरी 35। असल में पहले मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी ना, तो मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी, अब तो माशाल्लाह देखना मैंने भाग भाग के तेरे रस्तों में आना। वो शादी गोडों गुट्टों में बैठ जाती है कि पहले केले थे अब तो और नाम लग गए। क्या हम इस आईने में अपने आप को देख सकते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही, बस जब दिया हमने, आता हम दिया उसने उनको, मिन फ़ज़लिही अपने फजल से, बखीलू भी ही तो बुखल किया। सबसे बड़ा बखील बंदा बनता है अल्लाह के साथ जब उसके पास वो ही कोई नेमत लेकर आता है। नमाजें छोटी, इबादतों में कमी, पैसा ख़त्म, पहले तो केले थे अब तो बहुत सारी ज़रूरतें आ गई, पहले तो वक्त ही अपना था अब तो दूसरों को भी टैकल करने लगे, बखीलू भी ही बुखल पे आ जाता है। और आप पता है बुखल कहते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी पे भी ना लगाना, यानी फ़र्ज़ी बातें जब करनी थी वो भी नहीं अब करता, वतवल्लो और मुंह फेरता है, पहले तो सिर्फ थोड़ा सा पीठ मोड़ी, वहम मोरिदून, फिर तो बढ़ते बढ़ते इराज़ हो गया। पीछे आपको बता चुकी हूँ तवल्ला और मोरिज़ का फ़र्क, मोरिज़ इराज़ से, आराज़ा मुँह फेरना, जस्ट लाइक चिक को साइड पे करना, और तवल्लो के पूरी पीठ ही फेर ली, यानी थोड़ा छोड़ते छोड़ते पूरा ही छोड़ दिया। क्या इन आयतों की तफसीर की ज़रूरत है? क्या ये आयतें मुझे आपको समझ नहीं आ रही? यहाँ तो माल के बुखल की बात है, वक्त का बुखल, जज्बात का बुखल, स्किल्स का बुखल, हर एक को सोचें। अच्छा आप कहते हैं हम नहीं करते, अल्लाह को काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने हम जाने किसी को क्या। अब सज़ा लिखिए, आयत 77, सज़ा। पीछे हमने कितनी डिटेल से निफाक की चीज़ें कल पढ़ी ना, 8-10 हमने डिफरेंट अलामतें पढ़ी, आज इस 77 आयत के साथ लिख लीजिए निफाक पैदा कैसे होता है। अल्लाह कहते हैं फाक बहुम निफाक अनफी कुलूबिहिम, तो अल्लाह ने सज़ा के तौर पर डाल दिया इनके दिलों में निफाक। रुकिए और सोचिए, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कोई कमिटमेंट करे और ना निभाए, तो इससे निफाक का बीज दिल में पड़ जाता है। ये मुनाफ़क़त कोई लिखी भी नहीं है इधर उधर पड़ी हुई कि अब इसके बाद वाली बाउंड्री लाइन क्रॉस की तो निफाक आएगा। ये छोटे छोटे रवैये मेरी आपकी ज़िंदगी के मुझे मोमिन या मुनाफिक या काफिर बनाते हैं। अल्लाह से वादा करके इससे फिर जाने की दुनिया में ये नक़द सज़ा है। लिखें ये जुमला, अल्लाह से वादा करके इससे फिर जाने की दुनिया में ये नक़द सज़ा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों में निफाक पैदा कर देते हैं। और बदकिस्मती से आज यही रोग हमें अपने कल्चर के लोगों में नज़र आता है। आज लोग कहते हैं मस्जिदें आबाद है तो सोमालियों की वजह से, आज फलां जगह अगर पर्दा देखना है तो आप अफ्रीकियों का देख लें। हर खूबी के साथ कोई ना कोई कल्चर है, सादगी देखनी है तो बांग्लादेशियों की देख लो, और अगर ये दुनियादारी देखनी है तो हमारे पाकिस्तानियों की देख लो। और कोई कह नहीं सकता अपने आप को मुनाफिक, दूसरे को तो कहने की ज़रूरत नहीं है। आज बहसियत मजमुई पाकिस्तानी कौम इस निफाक का शिकार हो चुकी है। एक होता है इनफरादी निफाक, ये अभी इस सूरत में हम इनफरादी निफाक पढ़ें, ये भी बता दूँ कि जो पीछे आयात पढ़ी है ना मुनाफिकून और मुनाफिकात वाली, ये इनफरादी है। इज्तमाई निफाक की बात आगे होगी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह हज में जाकर, अल्लाह ने वहाँ इज्तमाई और मुल्की निफाक की भी बात की है। आप देखिए कि हम मुसलमानों ने बरसगीर में रहते हुए तहरीक पाकिस्तान के दौरान अल्लाह से एक वादा किया था, और ये वादा एक नारा बनकर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, पाकिस्तान का नाम बना। उस दौर के जो लोग थे हिंदुस्तान में, उन मुसलमानों ने तो वोट देकर अपना फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर दिया कि तुम जाकर पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम कायम कर लो, हम पे जो यहाँ गुजरेगी हम निबट लेंगे। लेकिन फिर वहाँ से हरकत करके आने वाले, हिजरत करने वाले मुसलमानों ने भी जाने दी, कुर्बानियाँ दी। अभी 14 अगस्त नया नया गुजरा, कितनी कहानियाँ थी दर्दनाक कि तुम 14 अगस्त के जश्न मनाते हो, हमें उस दिन वो लाशों के ढेर याद आते हैं और हमें बेटियों की इसमतें लुटी हुई नज़र आती हैं। तुमने किया क्या है इन 70 सालों में? इस मुल्क का हाल ये देखो, अब कहाँ है इस्लाम और कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या ये पाकिस्तानी कौम की अल्लाह के साथ इज्तमाई बदहदी और बेवफाई नहीं है? और इस बदहदी का याद रखिए नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में 3 किस्म के निफाक मुसल्लत कर दीजिए। कौन से निफाक है आज हमारे मुल्क के? नंबर 1 बाहमी निफाक, ये कौम फिरका फिरका हो गई, सिंधी पंजाबी मुहाजर और पश्तो और पता नहीं किन नामों में बट गई। ये हमारा बाहमी निफाक है। असबियतें पैदा हो गई, कहीं सूबों में बट गए, कहीं मजहबी फ़िरकों में बट गए, कहीं नामों में बट गए। आज हमारा बाहमी इत्तेहाद पारा पारा हो गया। और दूसरे, जब ये निफाक हमारे दिलों का रोग बना तो इससे शख्सी किरदार और कौमी किरदार का बेड़ा ही पार हो गया। जब ये निफाक हमारे दिलों का रोग बना ना, तो हमने अमल करना छोड़ दिया इस्लाम पे। इस पर बड़े खुश हैं कि मुसलमान हैं, पर आप नहीं समझे तो हदीस समझ लीजिए, जो आप में से हर एक को ज़ुबानी आती होगी। अबू हुरैरा की रिवायत है, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। और मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज हैं, वह इंसान वन सल्ला, अगरचे वो रोज़ा रखता हो और अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, वह ज़ाम अन्नहु मुस्लिम, और गुमान ये करता हो कि मैं मुसलमान हूँ। देखिए इस हदीस से तो और भी वाज़े हो गई ना कि नमाज रोज़ा करने के बावजूद भी मुनाफिक बन सकता है बंदा। और अलामतें, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बोले तो झूठ बोले, व इज़ा वादा खलफ, वादे करे तो खिलाफ वर्जियाँ, व इज़ा तुमीना खान, और जब अमानत रखी जाए तो ख़यानत। इस हदीस को एक मेयार, एक क्राइटीरियन, एक फुरकान बनाकर ज़रा आज अपनी कौम के किरदार को परख लीजिए। जो जितना बड़ा उतना ही बड़ा झूठा, उतना ही बड़ा वादा खिलाफ, उतना बड़ा खाइन इल्ला माशाल्लाह। नहीं समझ आ रही? आज झूठ के बगैर काम नहीं चलता, बात करके टाल दें। अभी भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? आप कहना चाहिए किसी एक के बस तो पढ़ के देखें, जिसको कहते हैं ना किसी के बस अल्लाह आपको ना डाले। अभी भेजते हैं, चलिए अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा। आप 2 हफ्ते ना फ़ोन करें, वो कल नहीं आएगी। वो कल तब आएगी जब आप फ़ोन कर, अरे अच्छा हाँ भूल गया, अच्छा भी करते हैं, अच्छा किया था, सोचा था। यानी ऐसे लगता है कि आज उम्मत की ज़ुबान पे खयानते हैं, झूठ है। और तीसरा निफाक जिस पे आज हमारा मुल्क इस वक्त शिकार है, वो है इस मुल्क का आइन। 70 साल हो गए इस मुल्क का, अभी तक आइन नहीं बना। किसी मुल्क की सबसे अहम दस्तावेज़, डॉक्यूमेंटेशन, उसका दस्तूर, उसका आइन होता है। आपको तो हम ये नूरुल कुरान जब किसी नए मुल्क में जाते हैं तो शुरू करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सबसे पहली चीज़ आपको पता क्या है? किसी दुनिया के मुल्क में आप किसी इदारे को रजिस्टर करवाएं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन लाए। उसमें बनने में कई महीनों लग जाते हैं। करते क्या हैं आप, हैं कौन, आपके अज़म क्या, आपके साथ कौन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ले जाएँ, 2-4 हफ्ते की कहानी होती है, अल्लाह काम करा देता है। आज तक हमारे मुल्क का आइन क्या है? एक चीज़ थी, उसी में कुछ डाला कुछ निकाला, वो इस्लाम तो नहीं रहा। इस्लामी के लफ्ज़ के साथ तो जमहूरिया नहीं, जमहूर इस्लामी हो गई। तो याद रखिए, हमारे आइन में एक हाथ से इस्लाम दाखिल किया जाता है और दूसरे हाथ से निकाल लिया जाता है। अल्फाज देखें तो इस्लाम ही इस्लाम है, तामील देखें तो इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता। और आप देखिए कि कुरान, आपने भी बचपन में जब पढ़ा होगा, आपने 8-10 सालों की उम्र में, तो एक सब्जेक्ट था हमारे पास भी, हर एक के पास ही होता है, ज्योग्राफी भी था फिर एजुकेशन, तो उसमें मुझे आज तक वो जुमला याद आता है कि एक जुमला जब मैं तब पढ़ती थी समझ ही नहीं आता था, और कानून साजी का इख्तियार अल्लाह को होगा और उसके रसूल को होगा। कई जुमले लिखे होते हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती, नो लेजिस्लेशन विल बी डन, या कोई भी ऐसी नहीं होगी जो अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और अगर आप गौर करें तो सूरत हुजरात की आयतें, जो बिल्कुल पहली आयत का तर्जमा अमूमन हमारे दस्तूर में लिखा होता है, ला तुकद्दिमु बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, ला तरफ़ु अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये लफ्ज़ों के हद तक तो बड़े खूबसूरत है। और मुझे आज भी याद है, पाकिस्तान, वज़ीरे पाकिस्तान, सदरे पाकिस्तान की जब भी कभी टीवी पे तकरीर शुरू होती थी, तो उससे पहले ऐसी आयतें, अब समझ आती है मुझे, याद है अभी भी वो आयतें, कोई सूरत निसा की जिसमें नबी सल्लम की इत्तबा की बात है, उलिल अम्र की बात, उन आयतों की तिलावत मौलवी साहब और कारी शाकर कासमी साहब करते थे। मुझे नहीं पता अभी है याद है कि नहीं है, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। तिलावत उनकी, तर्जमा उनका, और उसके बाद सब कुछ। आदाब देखिए, आपका मुल्क है जहाँ से लोग, मैं कहती हूँ सारी दुनिया में अपना इस्लाम बदनाम कर रहे हैं, बदनामी की हद तक बदनाम कर रहे हैं मुसलमान। और कल तो मुझे कितनी कड़वी किसी ने ईमेल भेजी कि देख के मेरा दिल अभी तक कड़वा है, कि कुर्बानी के जानवर बेचते हुए औरतों को नचा रहे हैं, कि नाचती हुई औरतें कहती हैं आओ देखो और ये गाय बैल भैंस खरीदो। वो एक जानवर नहीं है, साथ बाकी भी जानवर है। ये सुन्नतों का मजाक है। हर दिन कोई नया दुख तकलीफ हम इस पढ़ाने के दौरान जुबान पे आ जाती है। समझ नहीं आ रही थी कि ये गाय ज्यादा ना समझ है, या नाचने वाली ना समझ है, या ये जो बेवकूफ बन के नाच देख रहे हैं वो, या ये इस पोस्ट को नेट पे डाल के हम जैसों को दिखाने वाले ना समझ है। किसने देखा था वहां खड़े, 100 बंदा खड़ा होगा उधर, वहीं मार देते इसी को, अपनी मौत मर जाता ये सीन। सिर्फ आप वो कहना चाहिए कि दुनिया को दिखाने के खाते उन्होंने एक दफा देखा, अब 10 दफा आगे पीछे करके उस औरत का नाचता फुदकता जिस्म देखे। आउज़ु बिल्ला, ये वक्त आज उम्मत मुस्लिमा पे आ गया, फिर निफाक नहीं तो और क्या है, आप इसको क्या कहते हैं? और ये करने वाले कौन है? हमारी दीवारें तो नहीं है मुल्कों की, हमारी ज़मीन तो ये नहीं कर रही, हमारा आसमान तो ये नहीं कर रहा, इंसान कर रहे हैं। हम मुसलमान जब इस्लाम के नाम पर एक मुल्क लेते हैं और उसका सिर्फ एक लफ्ज़ी ढांचा है, क्या आज हम मुसलमानों की ज़िंदगी ऐसी बन चुकी है? आप देखिए कि आपका मुसलमान मुल्क है और अभी तक उसके अंदर सूद हराम नहीं हो पाया, और अभी निकल नहीं सका, और आपके मुल्क से कोई शिर्क के घर नहीं ख़त्म हो सके, तो क्या फिर ये सारा कुछ एक कानूनी निफाक नहीं है? शायद ही दुनिया के किसी कानून में इतनी मुनाफ़त पाई जाए जितनी आज हमें मिलती है। एक शादी होकर टूटने के कवानीन पढ़ के आइए पाकिस्तान लॉ के, और आप खोलिए सूरह बकरा, और तलाक के और इद्दत के और अज़ाद के पढ़िए, आप हैरान होते हैं। आप पढ़िए सूरह निसा की पहली आयत, क्या दल कर सकते हो तो 4 शादियां भी कर लो। और आप ज़रा अपने मुल्क के कानून को पढ़ के देखिए, दूसरी शादी के लिए हुक्म क्या और कानून क्या। दूसरी शादी करने पे बीवी मर्द को जेल में भी लेके जा सकती है, क्योंकि मेरी इजाज़त नहीं ली उसने। यानी मैं सिर्फ आपको ये बातें क्यों समझाती हूँ कि आप यहाँ सिर्फ कुरान पढ़ के उठ के चले जाते हैं, आपके अंदर हरकत नहीं दिखती। हमारे अंदर अभी वो इस इस्लाम और इस दीन से वो प्यार ही नहीं दिख रहा कि हम कुछ करें, क्योंकि अंदर आग लगती है फिर बंदा फिर नहीं खड़ा रहता। कुछ करने की ज़रूरत है, असल बात करने का ये मकसद है इस वक्त, ये बातें कि इल्म लीजिए। कल भी आपको बताया कि अगर किसी की इलाज करना है तो पहले डॉक्टर बनना पड़ता है, और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ते हुए ही आधा पढ़ा है आधा छोड़ा है तो क्या डॉक्टर बनेंगे आप, क्या किसी का इलाज करेंगे? संजीदगी के साथ इस वक्त कुरान को सीखने की ज़रूरत है, और अल्लाह के नबी की अहादीस को पढ़ने की ज़रूरत है। नाम की बात है, ये चेहरे बदल कर आपके मुल्क में लोग आते हैं, और पिछले 15-20 साल से तो हम अपने शऊर से देख रहे हैं। मैं तब सोचती थी वो ना आया दूसरा आया पता नहीं क्या हमारा मुल्क हाल होगा, कितना अच्छा हो जाएगा, वो भी आके चले गए। उसके बाद अब जो आते जाते हैं उनका तो हमें इतना पता ही नहीं है। एक शौक था वक्त था, टीवी ऐसे बैठ के देखते थे जिस दिन वोटिंग होती थी कि जैसे शायद हमारे जन्नत जहन्नुम में जाने के फैसले हो रहे हैं, और बीच में जो वो इश्तेहार दिखाते थे और गाने सुनाते थे शौक से सुनते थे बैठ के लोग, कि जी पता नहीं कौन आ रहा है, फलां आएगी या फलां आएगा, सारे आके चले गए, क्या मिला आपके मुल्क को, क्योंकि पीछे ढांचा खराब है, आपके तो कानून में निफाक है। और फिर उसके बाद जब जिन जगहों पे पेश की जाती हैं वो कौन से आपके अच्छे हैं, बड़े बड़े उलमा को पैसे दे देकर उनको अपने हिसाब से रखा हुआ, यानी ये तो बात अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात वापस आ जाइए आयत पे, अल्लाह निफाक का तोहफा देता है वादा खिलाफियों पे। अब मुल्क की बात से वापस अपने जिस्म पे आ जाइए, क्या मेरे दिल में भी निफाक का बीज तो नहीं पड़ गया और पता भी नहीं चलता? और मुझे सबसे ज़्यादा निफाक के लफ्ज़ से इस बात पर डर लगता है, वहुम ला यशुरू, मैं जिस दिन इस लफ्ज़ को समझी थी मैं कांप गई थी कि इसका मतलब कि मुनाफिक को नहीं पता होता कि मैं मुनाफिक हूँ, तो शायद मैं भी मुनाफिक हूँ और मुझे ही नहीं पता। जैसे कभी बंदा बीमार होता है लेकिन वो नहीं मानता, सब कहते हैं आप बीमार हो गए, तो मैं नहीं बीमार, मुझे नहीं शुगर, क्योंकि परहेज़ करनी पड़ेगी। तो कभी कभी इंसान मानता ही नहीं है कि मैं मुनाफिक हूँ, और कब तक था ये निफाक, इला यौम यलकाउ ना हो, और ये निफाक अब रहेगा उस दिन तक जिस दिन ये लोग मुलाकात करेंगे उससे, यानी इस निफाक से इनकी जान रोज़े क़यामत तक न छूटेगी, ये कांटा अब इनके दिलों से नहीं निकलेगा। वजह बीमा अखलफ, बस अब इस वादा खिलाफी के जो उन्होंने अल्लाह से की, माँ वादू हो वह भी माँ कानू यकजीबोन, और दूसरी वजह झूठ बोलते थे। तो दो बातें समझ आ गईं, अल्लाह से किए हुए वादों की खिलाफ वर्जियाँ, और झूठ बोलना बंदे के दिल में निफाक डालता है, और सोचता क्या मुनाफिक कि मेरा निफाक छुप जाएगा, उसको ना बताना, उसको ना पता चले, हाय मेरा नाम ले दिया, मेरा जिक्र कर दिया। किसी की कोई मिसाल भी मैं यहाँ आपको दे दूँ ना, मिसाल है कि मैंने कोई चीज़ कहीं देखी, ऑब्जर्व की, और मैंने आज इस्लाह की खातिर नाम लिए दिए बगैर आपको बता दिया, तो लोग इस पे भी माइंड करते हैं, ओहो जिक्र क्यों किया। तो भाई जिक्र क्या करने की ज़रूरत है, वो तो आँख देखती है कान सुनता है।